ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21/9/62 का। रिकॉर्ड चला है आज अंधेरे में है हम सब स्नान। बच्चों के प्रति भगवान वाच, ऐसे नहीं कहा जाता। फॉलोअर्स के प्रति भगवान वाच, क्योंकि सन्यासियों के जो फॉलोअर्स हैं वो अपन को बच्चे नहीं कहला सकते। आजकल तो सन्यासी लोग भी अपन को भगवान मानते हैं। आजकल मतलब पहले नहीं भी मानते थे, पहले कहते थे हम उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आज तो कहते हैं शिवो हम ब्रह्मास्मि, तो वो अपन को भगवान मानते हैं। परंतु वो ऐसे अक्षर नहीं कह सकते कि भगवान वाच बच्चों के प्रति। ये तो बाप बिगर ऐसे कोई बच्चों को कह नहीं सकता, और बच्चों को वो बाप का प्यार देखने आ नहीं सकता। सन्यासियों के पास जाते हैं तो वो ऐसे नहीं समझते हैं कि हमारा बाप है। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे ये वर्षा मिलता है और अभी भी मिलना है। वो अपन को शिवो हम अथवा भगवान कहते हैं, परंतु अपने फॉलोअर्स के लिए ये दृष्टि नहीं रहती है कि हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, नहीं, वर्षे की तो फिर हम ऑब्जेक्ट चाहिए कि फलाने किस्म का वर्षा मिलेगा, जमीन जायदाद का वर्षा मिलेगा, कारखाने का वर्षा मिलेगा, मिल्कियत का वर्षा मिलेगा। यहां तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। गीत में भी कहते हैं हे भगवान हम आपके बच्चे हैं, आधा कल्प बिछड़कर बहुत भटके हैं। आधा कल्प अर्थात द्वापर और कलयुग में बहुत भटकते रहे। नाम ही है द्वापर युग, द्वैतवादी युग। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप से राजभाग लेते हैं। बाप आकर नई दुनिया रचते हैं तो नई दुनिया का राजभाग क्यों नहीं लेंगे। फिर जब राजभाग गंवाए देते हैं तो भटकते हैं। कब से भटकना शुरू हुआ वो भी बाप बैठ समझाते हैं। जब से दुनिया में दो दो बातें शुरू हुई, द्वैतवादी युग आया, द्वापर युग आया। दो दो धर्म हो गए, दो दो राज्य हो गए, दो दो कुल हो गए, दो से चार, चार से आठ होने लगे, तो भटकना शुरू हो गया। अभी एक बाप से ज्ञान मिलता है तो सोझरा हो जाता है, अज्ञान से अंधेरा होता है। और ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान कहा जाता है बेसमझ को हटा करके समझदार बनने को, अज्ञान कहा जाता है समझदारी से परे हो जाना, बेसमझ बनाना। तो ज्ञान अर्थात नॉलेज, ये है बेहद के बाप का ज्ञान, जो तुम बच्चे अभी सुन रहे हो, इसको ज्ञान का सोझरा कहा जाता है। जिस सोझरे से स्वर की स्थापना होती है, सोझरा होता है तो पहले पहले स्व की पहचान मिलती है, स्व के बाप की पहचान मिलती है, स्व आत्मा को कहा जाता है। दुनिया तो सारी नास्तिक है, क्योंकि बाप को कोई भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं, इसलिए बाप को ही आकर के बैठ अपना परिचय देना होता है। बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अनेक प्रकार की पॉइंट्स देते रहते हैं, क्योंकि एक बाप ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। बाकी तो जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की, वो सब जन्म मरण के चक्र में आती हैं, अपने पूर्व जन्मों को भूल जाती हैं। इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं दे सकती। बीज और झाड़ को जानना बहुत सहज है, फिर भी बीज से विस्तार कैसे होता है और विस्तार को पाए हुए झाड़ से बीज कैसे निकलता है, फिर बीज झाड़ से कैसे डिटैच हो जाता है, ये सब विस्तार से समझाया जाता है। भगवान आकर के जरूर नई दुनिया रचेंगे, पुरानी दुनिया में ही आवेंगे, पुरानी दुनिया में आकर के नई दुनिया का सैंपलिंग लगाते हैं, अर्थात नरक में आकर के तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। नरक के बीच में स्वर्ग स्थापन करना ये एक बाप का ही काम है। मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों ने तो बड़ा भारी रोला कर दिया है, सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, नाम नाम ही है सत्ययुग। मां सत्य का ही बोलबाला होता है और कलयुग कहा जाता है पुरानी दुनिया को। कलयुग कहो झूठ खंड कहो सारे ही झूठे बन जाते हैं। वो शास्त्रकार लोग तो सत्ययुग को अरबों वर्ष तक ले गए हैं, क्योंकि शास्त्रों में लगा हुआ है कि पहले पहले श्री कृष्ण सागर में अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आया, तो उस समय को प्रलय नहीं महाप्रलय समझते हैं। परंतु ऐसे तो होता नहीं है कि महाप्रलय के बीच में कृष्ण बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आ जावे। कितने गपोड़े लिख दिए हैं, अंगूठा क्या है, कहते अंगुष्ठाकार आत्मा होती है, तो यादगार शालिग्राम अंगुष्ठाकार बनाते हैं। जरूर आत्मा गर्भ महल में आती होगी, नई दुनिया में तो महल ही होगा ना, गर्भ जेल में तो नहीं आवेगी। गर्भ जेल होती है द्वापर और कलयुग में, नरक की दुनिया में। भगवान जो नई दुनिया रचते हैं उस नई दुनिया में तो गर्भ महल ही होता है। आदि में भी सुख, मध्य में भी सुख और अंत में भी सुख ही महसूस करते हैं। तो गर्भ महल हुआ ना, तो ऐसे नहीं है कि कृष्ण कोई सागर में अंगूठा चूसते हुए आ गया। अंगूठा अर्थात आत्मा के मनन चिंतन मंथन की बात है। जो अंगूठा चूसते हुए दिखाया गया है सागर कोई, वो स्थूल सागर नहीं है, ये तो विषय सागर की बात है। इस विषय सागर में रहते हुए ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हुए आत्मा के अपने अनेक जन्मों को जानना, यही अंगूठा चूसने का रहस्य है। पीपल के पत्ते की नाव दिखाई है, अब कोई पीपल के पत्ते पर कोई बच्चा कैसे बैठेगा। पीपल का पत्ता तो बहुत हल्का होता है, हल्के का मतलब है हल्का पुरुषार्थी। परंतु जरूर उस हल्के पुरुषार्थी ने अपने जीवन रूपी नैया पहले पहले भगवान के हाथ में सौंपी है, इसलिए उस जीवन नैया का बहुत भारी महत्व हो जाता है। कहते भी हैं नैया तेरी राम हवाले, भगवान आत्मा और नैया दोनों का खेवैया है, वो पार ले जाने वाला है, اس نیا کے لیے گائن ہے، نیا ڈوبے گی، ہلے گی، ڈلے گی، لیکن ڈوبے گی نہیں. کیونکہ اس نیا کی ڈور بھگوان کے ہاتھ میں ہے. نیا بھی کوئی سامان نہیں ہے، نئی دنیا کا فاؤنڈیشن ڈالنے والی نیا ہے. تو باپ سمجھاتے ہیں شاستروں میں جو باتیں جیسے لکھی ہیں ویسے نہیں ہیں، ان استھول باتوں کا استھول ارتھ اٹھائی لیا ہے. تم بچے جانتے ہو بھارت میں آدی سناتن راجدھانی ساورنٹی تھی، سچ کی ساورنٹی کو اچھی ریت یاد کریں تو پتا چلے گا کہ ان کو 5000 ورش ہوئے ہیں. اس میں بھی منشی گروہوں نے آ کر کے جو دھرم استھاپن کیے، ان دھرموں کے آدھار پر دیکھا جائے تو 2500 ورش کی ہسٹری میں منشیوں کی ملتی ہے، اور وہ ہسٹری تب بنائی جاتی ہے جب منشی دکھی ہوتے ہیں. سکھ میں کوئی دن نہیں گنے جاتے ہیں. منشی جب دکھی ہوتے ہیں تو ایک ایک دن گنتے ہیں، تب ہسٹری بنائی جاتی ہے. ہر دھرم میں جو بھی تاریخیں تباریخیں تیار کی گئی ہیں وہ کوئی بھی 2500 ورش سے اوپر کی نہیں ہے، چاہے اسلام دھرم ہو، چاہے کرسچین دھرم ہو، چاہے ہندو دھرم ہو، وکرم سمبت ہو یا ہجری سمبت ہو، سب 2500 ورش کے اندر کے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے ابراہیم بدھ کرائسٹ آدی جو منشی گرو ہوئے ہیں، مانویہ دھرم پتائیں ہوئے ہیں، ان مانویہ دھرم پتاؤں کے آنے کے بعد دیت باد شروع ہوا، دواپر یوگ شروع ہوا، اور دویتوادی یوگ میں منشی دکھی ہونے لگے. کیونکہ دو دو دھرم ہو جاتے ہیں، دو دو متیں ہو جاتی ہیں، دو دو چار چار راجی ہو جاتے ہیں، راجیوں کی بھی سنکھیا بڑھتی ہے اور دھرموں کی بھی سنکھیا بڑھتی جاتی ہے، تو آپس میں ٹکراؤ بڑھتا رہتا ہے. تو یہ 2500 ورش کی دکھ کی ہسٹری ہے. اس کو کہیں گے اندھیاری رات. منشی گروہوں نے آ کر کے اندھیاری رات بنا دی. اس سے پہلے ستیوگ تریتا میں ضرور سوچ رہا تھا، جو بھی دیوتا روپی منشیاتمائیں تھی ان کو منشی سے دیوتا بنانے والا بھگوان ہی تھا جس نے ستیوگ تریتا میں جان کا سوجھرا کر دیا. ابھی پھر سے تم بچے نئی دنیا ستیوگ کے لیے باپ سے ساورنٹی لے رہے ہو. نئی دنیا کی راجدھانی تیار کر رہے ہو. ایشوری گیان اور یوگ بل سے نئی دنیا کی ساورنٹی کیسے استھاپن ہوتی ہے یہ تم بچے ہی جانتے ہو. क्योंकि तुमको बाप मिला है। दुनिया वालों को तो प्रैक्टिकल में बाप मिला ही नहीं। सत्य की सावरेंटी अर्थात नई दुनिया में सभी मालामाल थे। आज की कलयुगी झूठी दुनिया में थोड़ी आत्माएं मालामाल हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है, बच्चे समझते हैं। ये एक भारत ही प्राचीन देश है जहां सतयुग बरतता था। उस सतयुग में क्या था? देवताओं का राज्य था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसे आर्य अक्षर नहीं कहना चाहिए। आर्य और अनार्य सिवाय देवी देवताओं के कोई बनते ही नहीं है। और धर्म की आत्माएं आर्य नहीं बनती हैं। आर्य कहा जाता है समझदार को। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ को आर्य कहा जाता है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवात्माएं थी वो ही और धर्मों के कुसंग में आकर के अनार्य बन जाती हैं, बेसमझ बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम अनार्य बिल्कुल बेसमझ बन गए। पहले तुम समझदार थे, तो ये आर्य कोई धर्म नहीं है, धर्म का नाम नहीं है। ये आर्य समाजी तो मठ पंथ है। बाबा कहते हैं तुम कितना समझदार थे, अभी बेसमझ बन गए हो। तो आर्य शब्द से इन आर्य समाजियों ने अपना धर्म अपना अर्थ उठाई लिया है। वो समझते हैं हम पुराने थे। अरे ये आर्य धर्म तो बहुत पुराना है, सदा से चला आता है। ये आर्य समाज की स्थापना तो महर्षि दयानंद के द्वारा हुई। जैसे आजकल के ब्राह्मण लोग कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, अब ब्रह्मा तो आता ही है संगम पर, तो वो ब्रह्मा की संतान अपन को कहला ही नहीं सकते। संगम चाहिए कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची, फिर अरबों वर्ष की आयु ले जावेंगे। तो आर्य तो नहीं लिखना चाहिए। भारत में आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी थी। उन्हों देवी देवताओं को भगवान भगवती कहा जाता था। भगवान आवेंगे तो जरूर भगवान भगवती बनावेंगे। तो भगवान भगवती के बदले आर्य लिखना रांग हो जाता है। देवी देवताओं की ही पूजा होती है। पूजी को आर्य कहा जाता है। कार्तिक के आदि में मेला लगता है तो गाते हैं बजराधे गोविंद। कृष्ण को बहुत याद करते हैं। सभी कहेंगे कृष्ण जैसा बच्चा मिले। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं। परंतु झूला क्या है वो स्थूल झूले को समझ लेते हैं। ये तो बुद्धि का झूला है। कभी ऊंची स्टेज में जाती है बुद्धि, कभी नीची स्टेज में उतर जाते हैं। सबसे जास्ती झूले में झूलने वाली है कृष्ण की आत्मा। कभी बहुत नशा चढ़ जाता है, कभी एकदम नशा उतर जाता है। ऐसा नशा चढ़ता है जो अपन को भगवान समझ बैठते हैं। और नशा उतरता है तो एकदम दास बन जाते हैं। हनुमान अपन को रामदास कहता था, आजकल तो रामचंद्र को भी झुलाते हैं। परंतु ला ऐसा नहीं कहता है। राम तो बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। बाप समझदार होता है, बच्चा तो बेसमझ बुद्धि होता है। तो राजयोग की राज की बात राम बाप की बुद्धि में बैठेगी पहले या कृष्ण बच्चे की बुद्धि में बैठेगी? तो राम वाली आत्मा ऊपर नीचे झूलने की बात नहीं है। वो कभी भी निश्चय निश्चय के झूले में नहीं झूलती। ये तो कृष्ण बच्चे की बात है। और फिर उसके जो भी फॉलोअर्स हैं वो नीचे ऊपर होते रहते हैं, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। तो सारी दुनिया ब्रह्मा के बच्चे कहे जाते हैं। ये श्री कृष्ण बहुत बड़ा प्रिंस था। इस भारत को ही कहा जाता है राव की भूमि। यहां दान पुण्य बहुत करते रहते हैं। 21962 की वाणी का दूसरा पेज तीसरी लाइन। तो बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य एक तो राजभाग लेते हैं बाहुबल से, लड़ाइयां करके। ये बात भी तुम जानते हो। बाकी दूसरे धर्म वाले तो सभी अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं। तुम तो योग बल से विश्व की बात चाह ही लेते हो। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। तुम तो कोई प्रकार का हिंसक युद्ध नहीं करते हो। तो बाबा का समझाया हुआ था, इनको कहा जाता है राजस्थान, ये राजाओं का स्थान है। आज में भी राजस्थान था, अभी अंत में तो है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य। जब बाप आया है तब ही ये कौरव राज्य स्थापन हुआ है, खास भारतवर्ष में। कौओं की तरह रब करते रहते हैं, शोरगुल करते रहते हैं कि हम नई दिल्ली बनावेंगे, नई दुनिया लावेंगे। बापू का जो स्वप्न था, राम राज्य लावेंगे, स्वर्ग बनावेंगे, वो कौओं का शोरगुल है। नित नई प्लानिंग बनाते रहते हैं, 5-year plans बनाते रहते हैं और ही नीचे गिरते जाते हैं। ये कुरु राज्य भी चाहता था, तभी तो बाप आए हैं और आकर के समझाते हैं। इनको कौरव राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य कहा जाता है, और ये राज्य अभी हुआ है जबकि बाप आए हैं। जब तक पार्टीशन नहीं था तो राजाओं का राज्य था, राजाएं राज्य करते थे। फिर उन्होंने आकर के ये कांग्रेसी कुरु राज्य स्थापन किया। अभी कोई भी राजा नहीं है, राजाओं का राज्य सारा छीन लिया गया। पहले नेपाल में बहुत अच्छे अच्छे राजाएं थे, अभी तो वहां भी उन राजाओं को भगाए दिए हैं। कांग्रेस चाहती है प्रजा को हक मिलना चाहिए, तो इनको कहा जाता है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, क्योंकि धर्म तो जानते ही नहीं है। स्वधर्म को तो बिल्कुल भूले हुए हैं, स्वात्मा को कहा जाता है। जो सत्य बाप ने सतयुग स्थापन किया था, उस राज्य में साफ को स्व की पहचान थी और सब देवात्माएं सही स्थिति में टिकते थे, आत्मा को जानते थे, आत्म की स्थिति में रहते थे। अभी उस आत्मिक धर्म को ही भूल गए हैं। गांधी तो गीता को बहुत मानते थे, परंतु उन गांधी को ये पता ही नहीं था गीता से क्या हुआ। समझते थे कि गीता से रामराज्य नई दुनिया नए भारत में स्थापन हुआ, परंतु वो नई दुनिया कोई गांधी थोड़े ही बनावेंगे। गीता हाथ में उठाए फिर कहते थे पतित पावन सीताराम। उनको खुद भी पता नहीं था कि पतितों को पावन बनाने वाला एक ही निराकार शिव बाबा है। तो वो गांधी भी रामराज्य तो नहीं स्थापन कर सका और ही रावण राज्य बन गया। वास्तव में कौरवों के राज्य के बाद ही पांडवों का राज्य स्थापन हुआ था। तो परमपिता परमात्मा गीता का भगवान आकर के समझाते हैं, मैं तुमको फिर से योग बल से राजा ही दिलाता हूं। इसको कहा जाता है योग बल से राज्य, राजाई के लिए योग सिखाते हैं, नाम ही है राजयोग। भगवान ज्ञान सुना करके राजाई देते हैं। ज्ञान से गधाई मिलती है, दास दासी बन पड़ते हैं, नौकर चाकर बन पड़ते हैं। बाबा ने समझाया था राजाई तीन प्रकार की मिलती है। ये हम जो योग बल से राजाई लेते हैं वो सतयुग त्रेता तक चलती है। वहां न लड़ाई की बात होती है, न कोई पैसा बहुत दान करके राजा के घर में जन्म ले सकते हैं। वहां तो भूखे गरीब कोई भी नहीं होते हैं। हमको वहां राज्य मिलता है योग बल से, तो वो योग बल का राज्य आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है। फिर होता है द्वापर कलयुग, द्वैतवादी राज्य। देवताएं तो अद्वैत होते हैं, द्वापर कलयुग में ऐसे नहीं कि जो धर्म स्थापन करते हैं वो राज्य भी स्थापन करेंगे। जब उनका घराना अथवा झाड़ बड़ा होवे, 200-400 वर्षों के बाद प्रजा की संख्या बढ़ जावे, तब राज्य की शुरुआत होती है। जब राजाई लेने के लिए सब लड़ाई करें तब राज्य ले सकते हैं। तुमको कहा जाता है बाहुबल से मिला हुआ राज्य, ये हुआ दूसरा प्रकार का राजा ही लेने का राज्य। एक है योग बल से राज्य, दूसरा है बाहुबल से राज्य। अच्छा, फिर जो राजा ही बाहुबल से लेते हैं उसमें गद्दी पर कौन पे होना चाहिए? कारण चाहिए। फिर जो ईश्वर अर्थ बहुत धन दान करते हैं वो आकर के राजाओं के घर में जन्म लेते हैं। वो सतयुग में तो है योग बल से प्राप्त की हुई 21 जन्मों की राजाई। 21 जन्मों के लिए राजा ने और दूसरी फूल है बाहुबल से राजा, ये अल्पकाल के लिए मिलती है। उस राजाई में फिर बारिश चाहिए, तो उनको फिर ईश्वर अर्थ बहुत दान पुण्य करना पड़े, तब राजाओं के पास व साहूकारों के पास जन्म ले सकते हैं, नहीं तो राजाई में कैसे आवेंगे। बाहुबल की राजाई में आने के लिए भी तो कारण चाहिए, तो जरूर ऐसे कर्मदान पुण्य आदि करेंगे जो बहुत धनवान के पास अथवा राजाई में जन्म लेंगे। गरीबों को दान देने, दान देने बगैर राजा के घर में जन्म मिल नहीं सकता, तो ये है ही राजस्थान। क्राइस्ट एक आया अपने धर्म की स्थापना करने, उसने कोई राजस्थान थोड़े ही स्थापन किया। जब तक उनका झाड़ वृद्धि को न पाए तब तक प्रजा से वॉरियर्स कैसे निकलेंगे, ये तो बाप ही आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। और कोई भी धर्म पिताएं आकर के राजधानी स्थापन नहीं करते, बाप आकर के ज्ञान और योग सिखलाते हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। तो बहुत धन दान करने से जरूर राजा के पास जन्म लेंगे। तो बाप समझाते हैं, अभी तो तुमको पूरा बलिहार जाना है, वो बाहुबल की राजाई लेने वाले तो थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं, और ये सन्यासी तो राजाई को मानते ही नहीं है, वो गृहस्थ धर्म को ही नहीं मानते। 21962 की वाणी का तीसरा पेज। तो बाप समझाते हैं, इस समय बलिहार जाने से तुमको 21 जन्मों के लिए राजधानी मिल जाती है। तुम एक बार बलिहार जावेंगे तो बाप 21 बार बलिहार जावेंगे। भारत में ही गाया जाता है, बारी जाऊं बलिहारी जाऊं, तुम्हारे बिगैर तो कोई भी बलिहारी नहीं जाता। यहां तुम आकर के बाप के बच्चे बने हो, जानते हो कि बेहद का बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे, जबकि राजाई नहीं रही है तब आकर के राजाई स्थापन करते हैं। बाप आकर के देवी देवता धर्म की राजधानी स्थापन करते हैं। तो तुम राजाई के लिए पढ़ते हो, इसलिए इनका नाम गीता पाठशाला रखा है। वो लोग तो शास्त्र बैठ करके पढ़ते हैं, उन्हें शास्त्रों की पढ़ाई का अहम ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। या तो बाप कहते हैं मैं यहां राजयोग सिखलाता हूं, और सत्संगों में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं रहती है, वो ऐसे नहीं कहेंगे हम राजयोग सिखलाते हैं, अथवा गीता से तुम राजाओं का राजा बनेंगे, ये बात भी नहीं समझाते हैं। वो कब ऐसे नहीं कहेंगे, बाबा ने तो बहुत गुरु किए हैं, खुद भी गीता आदि पढ़ते थे, ये नहीं समझते थे कि गीता सुनाने से कोई राजा ही मिलेगी। तो अब तुम राजयोग सीख रहे हो 21 जन्मों के लिए, 21 पारी गाया जाता है ना कन्या, वो जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे, इसलिए कन्या ही पूजती पूजी जाती है। ये रसम भी यहां से ही पड़ती है। कन्याओं का भारत में बहुत मान होता है, सन्यासी भी कन्याओं की पूजा करते हैं। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। ये बूढ़ियां भी कहेंगी हम ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो अभी का तुम्हारा प्रभाव भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अधर कुमारी और कन्या कुमारी कहा जाता है, तो ये भी कन्याएं हैं जिनको पूजा जाता है। यहां माता कोई भी नहीं है, या तो कुमारियां हैं या तो अधर कुमारियां हैं, और ये सभी ब्रह्मा की बच्चियां हैं। कुमारियां हैं, कुमारियों को सदैव सभी सदैव माथा टेकते हैं, क्योंकि कुमारियां पवित्र होती हैं। तो जब उनकी शादी होती है तो उनको सभी के आगे सिर झुकाना पड़ता है। भारत में गाया जाता है कन्या वो जी 21 कुल का उद्धार करे, तो वो कोई भिखारी कन्या उद्धार नहीं कर सकती है। ये तो अभी इस समय की महिमा है जो भक्ति मार्ग में चली आती है। कन्याओं को सिखलाते भी हैं। तब पूजी जाती है, भक्ति मार्ग में कन्याओं को खिलाते भी हैं। जब तक पवित्र है तो पूजी जाती है, अपवित्र बनने से सभी के आगे माथा झुकाना पड़ता है। बाहर का कोई भी विजिटर घर में आवेगा तो भी कहेंगे इनको माथा टेको। तो अभी बाप समझाते हैं, तुम एक बारी बलि चढ़ेंगे, मेरी मत पर चलेंगे, तो मैं तुमको 21 जन्म का राज भाग दूंगा। जनक का मिसाल है ना, उसने सरेंडर किया, फिर गुरु दक्षिणा मांगी, कहता था हमको कोई ब्रह्मा बन करके ज्ञान दे, ब्रह्म ज्ञान नहीं। कई लोग ब्रह्मा कुमारी के बदली ब्रह्म कुमारी लिख देते हैं। अब तुम तो ब्रह्मा की कुमारी हो, ब्रह्मा का भोजन कहा जाता है, मनुष्य तो ब्रह्म भोजन कह देते हैं। अब ब्रह्म भोज तो है नहीं, वास्तव में ये ब्रह्मा भोजन तो यहां मिलता है। ये शिव बाबा का भंडारा है। कहा जाता है जिस भंडारे से खाया, यहां इस शिव बाबा के भंडारे से जो खाते हैं तो उनके कालकंटक सब दूर हो जाते हैं। ये कोई दुनियावी कमाई का भंडारा नहीं है। ये तो शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा का भंडार है। ब्रह्मा का भोजन है, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो तो तुम्हारा 21 जन्मों के लिए भंडारा भरपूर हो जाता है। और शिव बाबा से ही तुमको राजभाग मिलता है। तो बाप कहते हैं अभी पूरा पुरुषार्थ करके वर्षा लो, बीज और झाड़ को समझना है। इस मनुष्य शक्ति का बीज कौन है और उस बीज का विस्तार झाड़ क्या है, चार और पांचों युगों को बुद्धि में धारण करना है। पांचों युगों में पांच वर्ण कौन से तैयार होते हैं, वो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये वर्ण कहो अथवा कुल कहो बात एक ही हो जाती है। ये ब्राह्मण कुल ऊंचते ऊंचे है क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप आकर के ब्राह्मण कुल की ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। तुम पतित को पावन, हेल को हेवन बनाते हो, परंतु शिव बाबा के साथ योग बल से बनाते हो, तो तुमको पूरा योग रखना पड़े। इसमें फिर परहेज भी पूरी चाहिए, माया को जीतना और विकर्माजीत बनना, और तो कोई उपाय नहीं है। योग बल से ही विकर्म दग्ध होंगे, क्योंकि योगाग्नि कहा जाता है ना। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे, ज्ञान तो नॉलेज है जिससे फिर हम सतयुग के मालिक महाराजा महारानी बनते हैं। फिर विकारों में जाते हैं तो राजा विकर्म नाम पड़ता है। आधा कल्प सुख भोगते हो, गोल्डन सिल्वर जुबली, ये ड्रामा में नुदा हुआ है। 2162 की वाणी का चौथा पेज, इस ड्रामा से कोई का पार्ट निकल नहीं सकता है। 84 लाख वैरायटी जो भी हैं, सभी का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। ऐसे नहीं कि 84 लाख योनियां नहीं है, परंतु मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। बाकी सतयुग में कोई दुख देने वाली योनि नहीं होती है, दुख देने वाली कोई चीज कचरा आदि वहां होता ही नहीं, कोई ऐसे जानवर नहीं होते हैं, और नहीं वहां कोई बीमारियां होंगी। ये बीमारियां भी पीछे बढ़ती हैं। तो हरेक बात वृद्धि होती जाती है। पहले थोड़े ही यहां टमाटर होते थे, ये टमाटर तो बाहर से मंगाते थे, ये अंगूर भी बाहर से आता था। स्वर्ग में तो फल आदि बहुत फर्स्ट क्लास होते हैं, सूक्ष्म वतन में बाबा तुमको साक्षात्कार कराए, सूबी रस आदि पिलाते हैं, वो चीजें तो स्वर्ग की हैं, जो बाबा साक्षात्कार कराए टेस्ट कराने के लिए खिलाते हैं। साक्षात्कार से वापस आते हो तो यहां आने से फिर वैसे के वैसे रह जाते हो, तो ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। बल बाबा जानता है कि अभी तुम श्वास हो श्वास याद नहीं कर सकेंगे, परंतु फिर भी इतना पुरुषार्थ जरूर करना है जो अंत में तुम शिव बाबा को की याद में ही रहो, जो फिर अंत मते सो गति हो जावे। ये समझने की बातें हैं। जो पुराने शिकिल दे बच्चे होंगे उनको ज्ञान का तीर लगा और चटक जावेंगे। ये पहचान है आज के पुराने शिकिल दे बच्चों की। कहते हैं बाबा हमने आधा कल्प भक्ति की है, अब आप मिले हो हम आपको थोड़े ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। परंतु बाबा फिर कहेंगे अपनी रचना की संभाल करो, हम भी अपनी रचना की संभाल करते हैं, तुम भी संभाल करो, श्रीमत पर चलना पड़े, राय पूछ सकते हैं इस हालत में बाबा हमको क्या करना है। बाबा को भी जब पोता मिल का पता हो तो राय देगा। सभी बच्चे पोता मेल भेज देते हैं, फिर बाबा राय दे सकते हैं। इनसे कैसे बचाते रहो, बच्चों की संभाल भी तो करनी है ना। कोई कोई को फिर लोभ रहता है, समझते हैं पता नहीं कुछ हो जाए फिर हम कहां खावेंगे, इसलिए कुछ तो अपने पास रख देवे। ऐसे बहुत होते हैं जो आई वेले के लिए रख देते हैं कि शायद भगवान का हाथ छूट जाए तो हमारे काम में तो आ जाएगा। ऐसा ख्याल करने से फिर उनका हाथ छूट ही जाता है। एक मिसाल भी बतलाते हैं। स्त्री ने उनको कहा सरेंडर करो, तो सभी कुछ सरेंडर करो, एक भी चीज नहीं होगी तो अंतकाल बुद्धि उसमें चली जाएगी। समझो कोई आए वेले के लिए रख देते हैं अपने पास तो अंत मते सुगति हो जाएगी। सरेंडर पूरा किया नहीं तो वारिस नहीं बन सकता। अंतकाल में वो याद आ जाएगा, तुम बाप के बन गए तो फिर आई वेले भी वो संभाल करेंगे ना। यहां रहने वालों को तो ये ख्याल नहीं आना चाहिए। संग दोष में टेटर्स की बातें सुनकर के फिर उनकी मत पर चल पड़ते हैं। बाबा तो सभी बातें समझाते हैं। फिर कोई ऐसे न कहे कि हमको क्या पता, शिव बाबा से तो कुछ भी नहीं छिपा रह सकता, वो तो अंतर्यामी है, ये बाबा तो बाहर्यामी है। कौन? उनको बतलाने से समझेगा। किसको बतलाने से? साकार बाप को समझावेंगे, बतावेंगे, पूता पूरा पोता मेल देंगे तो वो समझेगा। बाकी बच्चों की चलन से भी सब कुछ समझ जाते हैं। ऐसी ऐसी खामियां होंगी तो अवस्था वृद्धि को पाए नहीं सकेगी। एक शिव बाबा को याद करना है, कुछ भी रहा होगा तो अंत मते सुगते हो जाएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा। बच्चों की यज्ञ से पालना होती है, तो अपने पास कुछ भी रखने की दरकार नहीं है। कोई भी बात में मुझते हो तो पूछ सकते हैं कि इसमें हमको क्या करना है, और मुझान तो सारी दुनिया की उतारनी है। जो बाप के बने हैं उनको तो मत पर पूरा चलना चाहिए, तभी वर्षा मिल सकेगा, नहीं तो प्रजा है। यहां तुम डायरेक्ट बाप से वर्षा लेने आए हो, कोई नए बच्चे हैं, सत्युग में आने के अधिकारी तो हैं, परंतु साधारण प्रजा में चले जाते हैं। ये भी समझना है, प्रजा में साहूकार कैसे बने। पुरुषार्थ तो वारिस बनने का करना चाहिए, मम्मा बाबा कहते हो तो वारिस बनना चाहिए ना। दो माता पिता तो नहीं हो सकते हैं, दो होगा तो प्रजा में चला जाएगा। एक माता पिता होने से राजाई में आवेगा। बाबा सभी बातें समझाते रहते हैं कि कब कोई अपना नुकसान न कर दे। अपन तो सब कुछ छोड़ते हैं भविष्य बनाने के लिए। सन्यासियों को देखो फिर लौटना पड़ा। अभी देखो महल घर आदि बना रहे हैं। हम तो इस दुनिया को ही छोड़ने वाले हैं, फिर यहां क्या महल आदि बनाना है। कोई कहे मकान को मकान क्यों बनाते हो, अरे बच्चों के रहने के लिए तो जरूर मकान बनाना पड़ेगा, बच्चों को भटकाना थोड़े ही है। जानते हैं थोड़े समय के लिए बनाते हैं, फिर तो हम ही नहीं रहेंगे। ये दिलवाला इतना बड़ा मंदिर है, उनकी भी इतनी ही लाइफ है जितनी तुम बच्चों की है। फिर वही मंदिर इसी समय बनावेंगे जब कल पहले बनाया था। ये मंदिर आदि सब खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों ने तो साक्षात्कार किया है विनाश का। अच्छा, ओम शांति।